તારીખ 5/12/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 181, 182 અને 183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 158
શ્રી સમયસર પરમાગમ આજે સંવર અધિકાર થી પહેલી તીન ગાથા એક સાથે ગાથા 181, 182, 183 સંવર અધિકાર કે પ્રારંભ મેં હી શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય સકલ કર્મ કા સંવર કરને કા ઉત્કૃષ્ટ ઉપાય જો ભેદ વિજ્ઞાન હૈ ઉસકી પ્રશંસા કરતે હૈં। क्या कहते हैं कि इस अधिकार का प्रारंभ करते हुए आचार्य भगवान संवर का उत्कृष्ट उपाय माने संवर का एकमात्र उपाय, वेद विज्ञान संवर का उत्कृष्ट उपाय है और दूसरा कोई अनुत्कृष्ट उपाय भी है ऐसा नहीं है। संवर का उत्कृष्ट एकमात्र उपाय जो वेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा माने महिमा करते हैं, सिर्फ दर्शाते हैं उतना नहीं लिया, महिमा करते हैं। उपेय है संवर, प्राप्त करने योग्य उपेय माने संवर, और उसका उपाय क्या है? वेद विज्ञान। वेद विज्ञान साधन है और संवर साध्य है।
प्राप्त करने योग्य संवर ही है।
प्राप्त करने योग्य संवर है। संवर माने आत्मशुद्धि। संवर की परिभाषा तीन प्रकार से आती है, अध्यात्म से, स्वरूप आश्रय से होने वाली आत्मशुद्धि उनको संवर कहते हैं, वो अस्थि से परिभाषा है। आत्मशुद्धि की अस्थि हुई, नास्ति क्या हुई कि अशुद्धि की नास्ति हुई, पुण्य पाप आदि अशुद्ध भावों की अभाव हुआ, नास्ति हुई, वो नास्ति से संवर की परिभाषा है। ये दोनों भाव भाषा में जाता है, भाव की व्याख्या में जाता है। और द्रव्य की व्याख्या है कि पूर्व नए कर्म आने का बंद हो जाना, निरोध हो जाना, नया कर्म का आश्रय ही नहीं हुए, बंध ही नहीं हुए, उसको संवर कहने में आता है। वो द्रव्य संवर है, ये दोनों भाव संवर है और ये द्रव्य संवर है। ऐसे तीन प्रकार से संवर की परिभाषा गुरुदेव श्री फरमाते थे, संवर की, निर्जरा की, ऐसे तीन प्रकार की परिभाषा करते थे। तो साध्य है आत्मशुद्धि और उसका उपाय है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान हुए बिना किसी को आत्मशुद्धि हो ऐसा तीन काल तीन लोक में बनता नहीं है, ये सिद्धांत है, ये वस्तु धर्म का सिद्धांत है। तो इसकी महिमा करते हैं आचार्य भगवान, उसको अभिनंदित ऐसा शब्द लिया है, तत्राद आवेव सकल कर्म समरणस्य परम उपाय भेद विज्ञान, परम उपाय कहा है।
भेद विज्ञान माने क्या?
भेद विज्ञान मैंने ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न अनुभव करना, उसी को भेद विज्ञान। भेद मैंने क्या अंतर है दोनों में, मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञान अवस्था में राग और ज्ञान अभेद रूप अनुभव में आता है, अलग अलग अनुभव में आता है क्या? ज्ञान का स्वाद अनुभव अलग, राग का स्वाद अनुभव अलग, ऐसा आता है क्या कि नहीं आता है? तो वो अभेद विज्ञान है, अभेद परिणमन है, उसमें ज्ञान और राग का भिन्न भिन्न अनुभव करना, ये तो कहेंगे ये विषय चलेगा, उसी को भेद विज्ञान कहने में आता है। आत्मा ने राग से भेद छेद करना है, तो राग का विषय भूत जो देहादि पदार्थ है, पंचेंद्रिय के विषय है, उससे भिन्न बना हो जाएगा, क्योंकि राग से ही उससे संपर्क होता था, राग से ही संबंध करता था जी, तो वो संबंध भी टूट जाएगा।
राग में देखते हैं महात्मा, राग में ही देखते हैं।
हाँ, राग में ही अपनापन होता है, तो राग में अभेदता हो जाती है, अभेदता सद्धति है, वही जन्म मरण का कारण है, वही संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण जो कुछ है, ये यही है कि जिससे एकत्व होता है, राग से अभेद भाव अनुभव में आता है, ये मिथ्या भाव है, क्योंकि राग ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान कभी राग हुआ नहीं, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी राग नहीं होता और राग ज्ञान नहीं होता, फिर भी एक रूप अनुभव करना यही संसार का मूल कारण है, यहाँ से मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और मिथ्या दर्शन उत्पन्न हो जाता है। जानने मात्र से नहीं होता है, अनुभव करने से होता है। वेद विज्ञान सिर्फ जानकारी का विषय नहीं है, वेद विज्ञान अनुभव करने का विषय है, इसलिए तो श्रद्धा स्वभाव ज्ञान का परिणमन उसको सम्यक दर्शन बोला। पुण्य पाप अधिकार में क्या आया, श्रद्धा स्वभाव से ज्ञान का परिणमन, मैंने आचरण, आचरण होता है तो धर्म होता है, जानकारी से धर्म होता नहीं है। वो गाथा कहते हैं, कलकत्ता में प्रारंभ में ये तीन गाथा लिया था शुरू शुरू से। उवोगे उवोगो कोहादि सुन हथी कोवी उवोगो, कोहे कोहे चेव ही उवोगे नथी खलु कोहो, अठ व्यपे कम्मे नो कम्मे चावी नथी उवोगो, वोगमीय कम्मम नो कम्मम चावी नो अथी, एवं तु अविवरीदं नाणं जय्यादु होदि जीवस, तैया न किंचिम कुवदि भावं उवोग शुद्धप्पा। उपयोग, उपयोग में है, उपयोग में ज्ञान का व्यापार, तो ज्ञान का जो परिणाम है, ज्ञान का व्यापार है, ज्ञान रूपी कार्य है, उसको यहाँ उपयोग कहने में आता है। वो एक ज्ञान और दर्शन दो ही गुण के परिणमन को उपयोग कहते हैं, दूसरे गुण के परिणमन को उपयोग नहीं कहते हैं। ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग, क्योंकि वहां चैतन्य की सावधानी होती है। जैसे बात बात में कहते जरा उपयोग रख के सुनो, सुनो उतना नहीं कहते, क्या
उपयोग रखो,
जरा उपयोग रखना, तो उसमें सावधानी रखना, ध्यान देना, ऐसा एक उसमें संकेत है। ऐसे ज्ञान का एक धर्म है सावधानी करने का, और इस गाथा में आया दृष्टांत दिया है आचार्य महाराज ने कि जैसे कोई मुट्ठी में रखा हुआ सोना को भूल जाता है, सुवर्ण को, और उसको ये गलत फहमी होती है कि मेरा सोना खो गया, था अपनी मुट्ठी में, तो मुट्ठी में था जब उनको स्मरण आया कि नहीं मेरा सोना तो मेरे हाथ में है, तो मुट्ठी में होने पर भी वो सावधानी आती है तो मुट्ठी टाइट हो जाती है, पकड़ा जाती है। अब है हाथ में तो फिर पकड़ क्यों करता है, कि ज्ञान का स्वभाव सावधानी करने का है। जब आत्मा अपने स्वरूप को सिर्फ जानता नहीं है किंतु जान करके स्वरूप में सावधान होता है तब उसको शुद्धोपयोग होता है। क्या तब उसको शुद्धोपयोग होता है। 833 पत्र में कृपालु देव ने भावना भाई है तो उसमें ऐसा लिखा है कि अब मैं मेरे स्वरूप में उपयोग करता हूँ। क्या मैं ऐसा हूँ करके भावना लिया है, फिर आखिर में लिया है कि मैं उपयोग करता हूँ। ऐसा क्यों लिया कि मैं ऐसा हूँ विकल्प सिर्फ नहीं करता। क्या मैं सिर्फ इतना विकल्प नहीं करता लेकिन अपने स्वरूप में सावधान भी होता हूँ। मैं सर्व से सर्व प्रकार से भिन्न हूँ। क्या भावना भाते हैं, पहले भिन्नता भेद ज्ञान वाली बात लिया। मैं सर्व से पूरा जगत से समस्त जगत से बिल्कुल भिन्न हूँ, सर्व प्रकार से भिन्न हूँ, मैंने बिल्कुल भिन्न हूँ। इस जगत के साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मैं तो बिल्कुल भिन्न हूँ, सर्व प्रकार से भिन्न हूँ। पूरा जगत मेरे लिए शून्य है, पूरा जगत मेरे लिए शून्य है, और मेरे में जगत की शून्यता है, बिल्कुल कुछ नहीं लेना देना। एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ मैं। कैसा, एक केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, परमोत्कृष्ट मैंने उत्कृष्ट अनंत अचिंत्य जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता लेकिन अनुभव किया जा सकता है, ऐसा अव्याबाध सुख स्वरूप मात्र हूँ। बाधा मेरे सुख को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। मेरी आत्मा में अभी इतना सर्वोत्कृष्ट अनंत अचिंत्य सुख भरा है कि जिसको कोई बाधा पहुंचा सकता नहीं है। अव्याबाध सुख स्वरूप, किसी की पहुंच नहीं, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता, बाधा कैसे पहुंचाए। और मैं एकांत, हाँ सम्यक एकांत की बात चलती है, मैं एकांत शुद्ध अनुभव रूप हूँ, यानी प्रत्यक्ष अनुभूति मात्र। अनुभव करने का मेरा स्वभाव है लेकिन एकांत शुद्ध हूँ, ऐसी अनुभूति मुझे होती है कि मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है।
एकांत माने
एकांत मैंने सर्वथा, हाँ जब ऐसा मैं हूं तो फिर विकल्प किसका, फिर विक्षेप किस बात का, डिस्टर्बेंस किस बात का, और भय किस बात का, और खेद मैंने शोक किस बात का, और फिर दूसरी अवस्था भी क्या, कौन क्यों, फिर दूसरी अवस्था क्यों, जब ऐसा मैं हूं तो दूसरी अवस्था मुझे क्यों। फिर भावना में और आते हैं, इतना प्रश्न कर गए कि मैं मात्र निर्विकल्प हूं। क्या अनुभूति तो सब विकल्प हो ही नहीं सकती, वेदन तो निर्विकल्प होता है। मैं मात्र निर्विकल्प हूं, शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध हूं। क्या
प्रकृष्ट,
प्रकृष्ट मैंने उत्कृष्ट, हाँ मैंने परम परिपूर्ण पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, परम पवित्र हूं, ऐसा लिया है। तीन दफे शुद्ध के शुद्ध शब्द लिया है, शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध हूं, परम शांत चैतन्य हूं, परम शांत सुधारसमय चैतन्य हूं। बात में शांति आ जाती है, बात करते ही शांति आ जाती है, अनुभव में क्या होता होगा देखो। हाँ, ऐसा मैं निरवशेष परिपूर्ण अंतर्मुखी स्वभावी हूँ, ऐसा पूरा अंतर्मुख होना ही मेरा स्वभाव, बहिर्मुख होना मेरा स्वभाव नहीं। ऐसा मैं निज स्वरूप में उपयोग करता हूँ, ये शब्द लिया आखिर में, ऐसे मेरे स्वरूप में मैं सावधान होता हूँ। कलकत्ता में दूसरे ढंग से चला, इधर दूसरे ढंग से चला।
मैं सावधान होता हूँ तो वो सेकंड पर्सन हो
गए? नहीं, वो तो अभी तो भावना में तो भाषा में तो वही बात आएगी, भाषा में तो वस्तु का स्वरूप है वो विकृत हो जाता है, भाषा बताने में स्वरूप को बताने में ही स्वरूप की विकृति हो जाती है, इसलिए सिद्ध परमात्मा कुछ बोलते हैं। एक दिव्य ध्वनि में ऐसा आता है कि विकृति नहीं होवे, क्योंकि वो भाषा भी विकृत नहीं है, अविकृत भाषा है, तो उसमें जो दिव्य ध्वनि सुनने वाले को फटाफट अनुभव हो जाता है, हमको नहीं हुआ, क्यों दे चले संस्करण में गए थे, नहीं हुआ हमको, क्यों शीर्षासन कर दिया,
आधे पानी
हाँ पूरे ऊंधे चले, ऐसी बात हुई। और मैं तन्मय होता हूँ, ऐसा सावधान हो करके मैं तन्मय होता, ऐसा लिया, तन्मय मैंने एकाग्र लीन होता हूँ, लीनता सूचक है, तन्मयता मैंने लीनता। तो क्या कहते हैं कि उपयोग उपयोग में है, ज्ञान का उपयोग है वो अपने उपयोग में है। देखो ये षट कारक में से एक कारक है, आधार, षट कारक में जो छठा कारक है ना आधार वाला है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण, ये अधिकरण लिया आचार्य महाराज ने, षटकारक लिया इधर, पर्याय का षटकारक पर्याय में है, आया कि नहीं आया,
आया।
उपयोग उपयोग में है तो उपयोग का अधिकरण उपयोग में है, ऐसा कहते हैं, आता है कि नहीं शास्त्र वचन में, आता है कि नहीं आता है, ये तो कुंदकुंद आचार्य के वचन है कि नहीं,
मूल में है।
हाँ, उपयोग उपयोगे उपयोगो, माध्यम में वो पढ़ा है, उपयोगे उपयोग में उपयोग, और संस्कृत लिया है उपयोगे उपयोग, वो सप्तमी विभक्ति उपयोगे उपयोग,
उपकरण के अधिकरण,
अधिकरण
अधिकरण अधिकरण, मैंने आधार, जिसके उपयोग किसके आधार से है, उपयोग के आधार से है, यहाँ द्रव्य का आधार नहीं लिया, परद्रव्य का तो आधार नहीं, ज्ञान को नहीं का तो आधार नहीं, लेकिन अपना स्वद्रव्य का आधार नहीं है,
उपयोग में
तो किस में है, आपका उपयोग किस में है, थोड़ा जांच करके देख लो, अवलोकन करके देख लो कि आपका ज्ञान का व्यापार ज्ञान में है या कुछ और जगह है, किसमें है, शरीर शरीर में है, लकड़ी लकड़ी में है, हाँ किताब किताब में है, ग्रंथ ग्रंथ में है, और उपयोग उपयोग में है कि नहीं है, कहाँ है, उपयोग उपयोग में है, क्रोधादि में कोई भी उपयोग नहीं है। क्या क्यों कहा के उपयोग के बाजू में बगल में बिल्कुल चारित्र गुण का परिणमन संसार में राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ आदि किसी भी प्रकार का मलिन कषाय रूप होता है, क्रोध मैंने कषाय, तो ज्ञान है वो क्रोध नहीं, क्रोध है वो ज्ञान नहीं। विज्ञान तो करवाना है, तो कहते हैं कि उपयोग का अस्तित्व कहाँ है?
उपयोग में है।
के उपयोग में है, तो उपयोग का अस्तित्व क्रोध में है?
नहीं
है। और क्रोध क्रोध में ही है, क्रोध का जो पर्याय है चारित्र गुण का मलिन पर्याय है, विभाव पर्याय है, वो किस में है?
क्रोध में।
क्रोध में है, देख लीजिए, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है।
दूध और पानी, दूध में दूध और पानी में पानी।
हाँ, दूध और पानी मिला दिया, दूध बेचने वाले ने दूध और पानी मिला दिया, तो क्या पानी दूध हो गया क्या? नहीं हो सकता, हो सकता उसको अलग कर सकते हैं, वो अलग थे, अभी मिला हुआ है तो भी अलग रहे हैं, और उसको प्रक्रिया करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि था ही अलग। हाँ, वो कोई पानी दूध होता नहीं, अगर पानी दूध हो जाता तो फिर पानी मिलता नहीं, तो पानी जगत में मिलता ही नहीं, उतना पानी मिला देते दूध में। साधन नो आया विषय नहीं, अहिया अधिकरण मैंने आधार, सातवी विभक्ति व्याकरण भेड़ा छो ने, नहीं कोई पण पदार्थ नो अपने सहकारक पदार्थ नी दृष्टि प्रमाण नी दृष्टि उतारी एटले समझाई जशे, ई जरा स्थूल छे आ सूक्ष्म पड़शे, पर्याय ना षटकारक जरा सूक्ष्म पड़े, पण पदार्थ ना षटकारक स्थूल छे। जैसे जीव अपना कार्य करता है तो जीव करता है, और अपना परिणाम रूप कार्य है उसको, जीव करता है और अपना परिणाम उसका कर्म है, कर्म कहो कार्य कहो। कर्म शब्द का बहुत अर्थ होता है, गुरुदेव ने 6 अर्थ लिया है इधर, ये कर्मवत पर्याय का प्रवचन चले है ना, इसमें 6 अर्थ लिखा है कि एक तो द्रव्य कर्म में कर्म शब्द का प्रयोग है, एक नो कर्म में है, और एक भाव कर्म में है, 3 तो वो है। फिर आत्मा के शुद्ध पर्याय को भी कार्य कहते हैं, तो उसको भी कर्म कहते हैं, और पुद्गल का जो विभाव है, पुद्गल परमाणु में जो विपाक आता है, उसको भी भाव कर्म कहते हैं, और कर्म नाम की शक्ति है, वो कारक है ना, षटकारक की शक्तियां हैं, उसमें भी उसको भी कर्म शक्ति कहते हैं। 6 प्रकार लिया है, तो कर्म शब्द से तो कोई समझे नहीं, यहाँ जो प्रकरण करना है उसको कर्म कहते हैं, तो कर्म की बात चली थी पालीताना में, विजय राम सूरी के साथ चर्चा हुई थी हमारे, राम सूरी महाराज के साथ, बोलो कि कर्म के उदय से जीव को विकार होता है, ऐसा उन्होंने सिद्धांत बताया। मैंने कहा ये बात गलत है, कर्म के उदय से विकार हो तो कोई धर्म प्राप्ति कर सकते नहीं है, क्योंकि 8 कर्म का उदय सभी संसारी जीव को मिथ्यात्व अवस्था में है ही, तो कर्म का उदय हो और उसको विकार करना ही पड़े, ऐसा कोई पाबंदी बंधन जीव को नहीं, जीव स्वतंत्र है अपना धर्म करने के लिए। तो फिर कर्म की परिभाषा मैंने पूछा, कर्म की परिभाषा क्या, वो कर्म के बारे करी भाषा क्या करे, फिर हमने वो उसका जो जनरल डेफिनेशन जिसको कहते हैं, बहुत वाइड है वो, कर्ता के इष्ट को कर्म कहते हैं,
कर्ता के
वो तो कैसे समझे नहीं उसमें कि कर्ता को इष्ट कैसे करने, कर्ता के इष्ट को कर्म कहते। मैंने फिर शास्त्र पद्धति लिया कि कर्म किसको कहते हैं, देखिए कर्ता के इष्ट को कर्म कहते हैं, समझे नहीं। फिर जो षटकारक है वो कर्म का षटकारक, पुद्गल कर्म का षटकारक इसमें है, और जीव का विकार का षटकारक जीव में है। अब आपस में दोनों कैसे कार्य करते हैं, जिससे कर्म से विकार विभाव होता है, विकार होता है, बताइए, वो षटकारक को समझे नहीं तो फिर वो दूसरा दूसरा तर्क करके विषयांतर करने को चर्चा में लग जाते थे। यहाँ तो कहते हैं कि जीव करता है क्योंकि उसमें कर्ता नाम का गुण है, जीव ही कर्म है क्योंकि उसमें कर्म नाम का गुण है, जीव ही करण है, करण स्वभावी है, जैसे ज्ञान स्वभावी है वैसे कर्ता स्वभावी, कर्म स्वभावी और करण मैंने साधन। तो जीव को अपना धर्म करने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। क्यों? कि अपने साधन साधन शक्ति से वो परिपूर्ण संपन्न है, अधूरा नहीं है, परिपूर्ण संपन्न है। इसलिए ऐसे वो अपने में से अपना कार्य करने का उसको संप्रदान है, अपना कार्य प्राप्त करने का अपादान का भी स्वभाव है, और अपने में ही अपने आधार से काम करे ऐसा आधार का गुण, अधिकरण गुण भी अपने छह प्रकार के गुण मैंने स्वभाव है जीव का।
संगी पंचेंद्री की क्यों अपेक्षा नहीं आती? संगी पंचेंद्री होना चाहिए
वो, इसकी योग्यता, किस योग्यता में कैसा काम होना ये सवाल है। योग्यता की पाबंदी रहती है, इसकी मर्यादा होती है। जैसे बालक की शक्ति बालक के अनुसार होती है और युवान की शक्ति युवान के अनुसार होती है, दोनों मनुष्य है फिर भी अवस्था अनुसार उसकी शक्ति होती है। ऐसे संगनी की शक्ति है वो अपने प्रयोजन को अच्छी तरह समझने की शक्ति होती है। असंगनी जीव में के ज्ञान में ऐसी शक्ति नहीं होती है, बस उतना ही कहना है। तो ये भी उपादान की बात है, ये शक्ति का प्रकट होना वो भी उपादान की बात है, उसमें निमित्त साधन तो लिया नहीं है, ऐसी बात है। क्या चलता है इधर देखो कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, निश्चय से खलु मैंने खरे खर वास्तव में क्रोध, निश्चय से उपयोग में क्रोध नहीं है। और अगर आगे कहते हैं कि आठ प्रकार के कर्मों में ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से आयु तक जो आठ कर्म है, और नौ कर्म में शरीर और संयोग दूसरे जो हैं, जो जीव के कहलाते हैं, जीव नहीं है फिर भी जीव के कहलाते हैं, कि ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर है, जीव का शरीर है
नहीं,
नहीं फिर भी वो ऐसा कहलाते हैं संयोग दृष्टि से, तो उसको नौ कर्म कहने में आता है। वो कर्म फल है, नौ कर्म क्या है? कर्म फल है। तो कर्म और नो कर्म में भी उपयोग नहीं है। ज्ञान का जो व्यापार है वो क्रोध में तो नहीं, मैंने भाव कर्म में तो नहीं, ज्ञानावरणीय वर्णीय आदि द्रव्य कर्म में भी नहीं, शरीर आदि नो कर्म में भी नहीं। और जरा देख लीजिए है कि नहीं है, शरीर में है उपयोग
है? देखा नहीं है।
ये निर्धार देख करके करना है, क्या विचार करके नहीं करना है? स्वाध्याय कैसे करना है?
निर्धार करके प्रयोग में लेकर
देख करके करना है कि जो नो कर्म हमारा शरीर है, तो ये शरीर में ठंड गर्म वो अनेक प्रकार के स्पर्श होते हैं, तो ये उपयोग है कि नहीं शरीर में है कि नहीं है? ठीक है, देख के बताएंगे। उपयोग उपयोग में है, शरीर में उपयोग इसका जो स्थूलता वो दिखने में आती है, इतना जैसा सुवाड़ापन है ऐसा उतना नहीं है, मतलब मालूम पड़ता है। तो हमने स्पर्श किया या हमको स्पर्श का ज्ञान हुआ देख करके बताइए, क्या अनुभव करके बताइए कि स्पर्श हो, हम स्पर्श करते हैं या स्पर्श का ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है। क्या होता है इसमें? कि इधर रेखा है उसको, उसका पता चलता है कि उसके लकीरें हैं छोटे छोटे बारीक लकीर है, उस पर से पता चलता है ना कि बारीक लकीर है, प्लेन नहीं है। हम तो स्पर्श करते हैं हम या स्पर्श का ज्ञान होता है? स्पर्श का ज्ञान होता है।
बिना देखे मालूम पड़ा नहीं कि लकीर है। हाँ। बिना देखे मालूम पड़ा नहीं कि लकीर है। यहाँ पर कोई देखा है फिर भी मालूम पड़ा नहीं लकीर।
हाँ लकीर है। कैसे ज्ञान ज्ञान को पता चल जाता है? तो स्पर्श किया या स्पर्श का ज्ञान किया बस उतना ही समझना है। नो कर्म है ये शरीर है वो नो कर्म है। नो कर्म में उपयोग नहीं, उपयोग में ज्ञान नहीं और ज्ञान में उपयोग नहीं है। संयोग होते हुए भी दोनों एक नहीं हुए, अलग हो जाते हैं। जब आयु पूरा होता है तो शरीर को मुर्दा कहते हैं लोग, डॉक्टर को बुलाते हैं जरा बता दीजिए जरा कि इसमें क्या है, तो कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है। तो जो सब कुछ था वो तो जीव था। अब जीव नहीं है तो कुछ नहीं है। क्यों शरीर नहीं है? शरीर है लेकिन कुछ नहीं है उसमें। जल्दी से जल्दी उसको निकालो यहाँ से। अभी क्या, अभी कुछ नहीं रहा, जल्दी से जल्दी, देर मत करो उसको। ये हालत हो जाती है शरीर की। जिस शरीर पे उतना राग था, प्रेम था, उस शरीर को उतना द्वेष करता है कि अभी जल्दी से जल्दी निकाल दो उसको, ज्यादा देर रखना नहीं। क्योंकि उपयोग नहीं है तो कुछ नहीं है।
जब तक मैं हूँ तभी तक मेरा अस्तित्व है।
हाँ, उपयोग है तब तक मेरा अस्तित्व है। तो अस्तित्व कहाँ देखना, कहाँ ढूंढना? उपयोग में। हाँ, उपयोग में अस्तित्व देखना है। अनुभवान से। कैसे? अनुभवान से देखना है, विचार से देखना वो बात नहीं है, अनुभवान से देखना है। अनुभव में वेदन आता है, उपयोग में भी वेदन चलता है, ज्ञान वेदन जिसको कहते हैं, उससे अस्तित्व का ग्रहण होता है। विचार से नहीं होता है अस्तित्व का ग्रहण, विचार से नहीं होता है, वेदन से होता है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसे विकल्प में स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, अस्तित्व ग्रहण नहीं होता, लेकिन वेदन में अस्तित्व ग्रहण होता है। वो थोड़ा सूक्ष्म बात है, थोड़ा आगे लेंगे वो। और उपयोग में कर्म तथा नो कर्म नहीं है। ज्ञान में द्रव्य कर्म नहीं और ज्ञान में नो कर्म भी नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों पुद्गलात्मक है। ऐसा अविपरीत ज्ञान, उपयोग में क्रोध नहीं, भाव कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म में उपयोग नहीं, ऐसा अविपरीत ज्ञान, ज्ञान मैंने अनुभव, ज्ञान मैंने जानकारी नहीं, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से जानकारी हम सबको हो गई लेकिन ज्ञान हुआ नहीं, उसको ज्ञान नहीं कहते। ऐसा अविपरीत ज्ञान, यहाँ तो अनुभव ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। इंटरव्यू में क्या कहते हैं, क्या कहाँ तक पढ़े हो? तो हम डबल ग्रेजुएट हो रहे हैं। अनुभव कितना है ये पूछेंगे क्या? और कोई दूसरा आएगा कि हम पढ़े नहीं है लेकिन अनुभव हमको 10 साल का है इस काम का, तो उनको पास करेंगे? बोले कि हमको अनुभव नहीं, हम तो पढ़े हैं, हम तो कॉमर्स की लाइन को पढ़े हैं इसलिए अकाउंट को जानते हैं। बोला कि अनुभव कुछ नहीं है, कभी काम नहीं किया। और दूसरा कोई बोला कि हमने 10 साल काम किया है, इस फर्म में काम किया, इस बैंक में काम किया है, तो उसको ले लो, ऐसा कहेगा। क्योंकि अनुभव ज्ञान का मूल्य है, पढ़ा लिखा ज्ञान का इतना मूल्य नहीं है जितना अनुभव ज्ञान का मूल्य है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। संसार अवस्था में भी प्रैक्टिकली लोग चलते हैं, ऐसा नहीं चलते हैं। कहने का मतलब वो है, मुद्दा वो है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। पर परमार्थ मार्ग है वो प्रैक्टिकल ज्ञान है, वो जानकारी वाला ज्ञान नहीं है। वो तो जानकारी तो वो तो इंफॉर्मेशन ब्यूरो में भी होती है। हमारी आत्मा कोई इंफॉर्मेशन ब्यूरो नहीं बनानी है, इधर से लिया उधर से लिया, इससे सुना, इसको पढ़ा, इस ग्रंथ को पढ़ा, बहुत जानकारी हो गई, इसलिए ज्ञान है। वो बात इधर है नहीं, उसका मूल्य कितना? शून्य है। इसका मूल्य शून्य, वो जानकारी का मूल्य शून्य। जानकारी का मूल्य तब है कि जब अनुभव होता है, तब वहां तक नहीं है। हाँ, बहुत प्रशंसा किया है ग्रंथ ग्रंथों में, अनुभव की प्रशंसा किया है, महिमा किया है, बहुत किया है अनुभव प्रकाश में, तो बहुत लिया है उसका। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीव को होता है, तब वह उपयोग स्वरूप शुद्ध आत्मा, देखो तब आत्मा नहीं कहा, शुद्धात्मा भी नहीं कहा, उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा, ऐसा क्यों कहा? एक एक शब्द में बहुत मर्म है। कृपाल देव कहते हैं कि शास्त्र में मार्ग तो कहा है, लेकिन मर्म ज्ञानियों के हृदय में रहा है। क्योंकि मर्म है वो लिखा नहीं जाता। क्या? लिखावट की मर्यादा में मर्म नहीं आ सकता, क्योंकि मर्म है वो स्वयं प्रयोग स्वरूप है, और प्रयोग है वो जीव का परिणमन है। तो परिणमन को लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। जैसे स्वाद को नहीं लिख सकते, स्वाद को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। जैसे एक लड्डू में बहुत से मसाले डाले, चीनी तो डाली थी लेकिन मसाले भी बहुत डाले, केसर डालते हैं और बादाम बादाम पिस्ता सब के कई प्रकार के मसाले डाले, ये बनाते हैं ना उधर ठंड के दिनों में पाक बनाते हैं ना, तो उसमें गुंद डालते, सौंठ डालते, पिपर डालते, वो डालते, वो डालते, छप्पन चिट डालते हैं, फिर इसका स्वाद कैसा आता है बता दीजिए। हम उसको कहेंगे कि ये गुंदर पाक है, या एक किसी का नाम ले लेंगे, ये मुसली पाक है, ये फलाना पाक है, ये, लेकिन स्वाद किसा है, किसका कैसा, क्या बताएंगे? हाँ, नहीं बता सकते। ऐसे स्वाद लिखा नहीं जाता, शब्द में कहा नहीं जाता, वैसे मर्म लिखा और कहा जाता नहीं है, लेकिन बताया जाता है। हाँ, वो बता सकता है, जिसके पास वो मर्म है वो बता सकता है, लेकिन वो कहा जाता नहीं और लिखा जाता नहीं है। इसलिए दर्शन करने की बात है। जैसे भगवान की प्रतिमा है तो उसमें उसमें मर्म है, क्या है? ये जो निक्षेप है, स्थापना नहीं, उसमें मर्म है, क्या है? कि अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है वो प्रतिमा दिखा देती है। प्रतिमा क्या दर्शाती है? अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है, कैसे लिखे उसको, लिखे कैसे? वो तो परिणमन है जीव का, अंतर्मुख है, खुद ही बोध स्वरूप है, स्वरूप का बोध हो जाता है। भगवान का दर्शन करने वाले को यथार्थता से दर्शन करे तो स्वरूप का बोध होता है। इससे वो तो शास्त्र और प्रतिमा जी वो संस्कारी जीव को होता है, वो संस्कारी जीव को होता है। जो संस्कार जीव को नहीं है उसको तो सजीवन मूर्ति ही चाहिए, ऐसी बात है। जैसे आप प्रतिमा का दर्शन जहाँ से समझदार हुए वहां से किया, ने मूल दिगंबर है तो दिगंबर मंदिर में जाते थे, प्रतिमा का दर्शन तो आज तक किया है, तो क्या अंतर्मुखपना समझ में आ गया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि संस्कार लेके नहीं आए। अभी कोई ज्ञानी पुरुष के संग में अगर कोई वैसा अंतर्मुखपना कैसे बोला जा सकता है, उसका प्रश्न चलेगा, उत्तर चलेगा, फिर प्रश्न चलेगा, फिर उत्तर चलेगा, बहुत छानबीन होगी तब योग्यता होगी तो आएगा, बिना योग्यता नहीं आएगा। उसमें भी योग्यता हो गई तो ये शर्त है, तब इसके पहले नहीं आता है।
योग्यता कब होगा?
हाँ, वो बात सही है। योग्यता किसको कहें, योग्यता का स्वरूप क्या, वही समझे कि हमको एकमात्र आत्महित करना है और कुछ नहीं करना है। संसार के सब आशा और अपेक्षा पर पूरी बिंदी लग जाए, चौकड़ी लग जाए, वास्तव योग्यता का प्रारंभ होता है, फिर वो योग्यता वर्तमान भी होती है। जब पर्याप्त मात्रा में वर्तमान होती है तब ये पता चलता है।
पूर्व में कैसे कर्म किए
हों, पूर्व में कैसे भी कर्म किए हों, हमारा आत्मा अनंत बार निबोध में अनंत काल तक रहा, तो कोई दुष्कर्म करने में हमें कभी कसर रखी नहीं है भूतकाल में, क्योंकि त्रस का पर्याय मर्यादित है। सभी परिभ्रमण करने वाली आत्मा और अपरिभ्रमण जो व्यवहार राशि में नहीं, सब निगोध में अनंत काल रही। एक आत्मा ऐसी नहीं है कि अनंत काल निगोध में नहीं रही हो, ऐसी कोई आत्मा नहीं है विश्व में। अभी सिद्धाली में गए, वो भी अनंत काल निगोध में रहे थे पहले क्योंकि अनादि से है, उसका कोई अंत ही नहीं है। निगोध में कब रहते हैं कि पूरे दुष्कर्म भाव में होते हैं तब। तो भूतकाल तो किसी का अच्छा नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। ब्राह्मण भी जो बात चली गई उसको उसका जोश देखता नहीं है, ज्योतिषी भी जोश नहीं देखता है इसका। तो अब आगे की सोचो और वर्तमान की सोचो, दीर्घ दृष्टि से आगे की सोचो और कार्य करने के हिसाब से वर्तमान की सोचो। भूतकाल किसी का देखना ही नहीं, नहीं नहीं कोई अस्तित्व नहीं, वो बात चली गई है। हाँ, अभी अभी काम करना है कि नहीं करना है, अभी नियत ठीक है या नहीं है, ये बात है फिर कोई आपत्ति नहीं, ऐसी बात है।
अपने आप पर ढूंढना है कि नियत ठीक है।
हाँ, वो अपने को देखना है, अपनी नियत कैसी है वो अपने को टटोल करके पूरा अंतर में से इस बात को पक्की करनी है। अगर हमारी नियत सही है तो मोक्ष मार्ग सरल है, सुगम है, सर्वत्र उसकी प्राप्ति हो सकती है और बहुत स्वच्छ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, पवित्र है, स्वच्छ है। हाँ, बहुत मर्म है इसमें, वो भी लेंगे वो तो भी शुरू करना है, गाथा तो 8-10 दिन चलने वाली है ऐसे नहीं पूरी होगी। भेद ज्ञान ज्ञान और राग के बीच में से चालू होता है। वेद ज्ञान का प्रारंभ कैसे होता है, वेद ज्ञान कहाँ से शुरू करना, जैसे बात तो तीन लिया कि भाव कर्म रूप क्रोध से भी उपयोग मैंने ज्ञान भिन्न है, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म से भी ज्ञान भिन्न है और शरीर आदि नौ कर्म से भी ज्ञान भिन्न है। जो भेद ज्ञान के तीन प्रकार लिए तो ये भेद ज्ञान कहाँ से चालू करना, तो के भाव कर्म और ज्ञान से चालू करना, कहाँ से चालू करना,
भाव कर्म और
ज्ञान से चालू करना। भाव कर्म मैंने क्रोध मान माया लोभ ऐसे जो भाव हैं उसको भाव कर्म कहते हैं, राग आदि भाव कर्म। इससे ज्ञान भिन्न है, दो भावों के में अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभव करना, यहाँ से भेद ज्ञान चालू करना, तीन बात है ना। तो पहली ये बात क्यों लिखी गाथा में, पहली ये बात क्यों आई, क्योंकि भेद ज्ञान करने का भी क्रम है, ये क्रम सूचक है, मर्म वो है उसका कि उसमें क्रम है। क्रम विपर्यास मत करना सबसे बड़ा विपर्यास क्रम विपर्यास है, क्रम विपर्यास नहीं करना, यहाँ से भेद ज्ञान चालू करना। सुगानी जी को सम्यक दर्शन कहाँ से हुआ,
ज्ञान
गुरुदेव गुरुदेव को सुना जब, तो क्या सुना था कि ज्ञान और राग जुदा छे, नान जुदो छे अने राग जुदो छे, आ सांभळ्यो तो सुना है उतना ही नहीं, गुरुदेव को परिणमते हुए देख लिया, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। क्या जगत में तो देखने से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता है, इधर तो देखने से भी आ जाता है हाँ, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, करने की होती है, लेकिन देखने से जो पहले नहीं आता था वो आ जाने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल ज्ञान में प्रैक्टिकल को देखना आवश्यक है। ये जो साइंस के लाइन होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें लेबोरेटरी में ले जाते कि नहीं, एक्सपेरिमेंटेबल पर एक्सपेरिमेंट कराते कि नहीं, क्योंकि वो ज्ञान पढ़ाई से नहीं आता है, वो ज्ञान पढ़ाई से नहीं आता है, उसको तो सीखना पड़ता है काम करके। ऐसे वहाँ भी ऐसी बात है। एक ही बात सुनी और एक ही बात देखी और वही एक ही बात करने लग गए तो 24 घंटा में उसका निवेड़ा आ गया। उत्कृष्ट बात पकड़ी ने आचार्य भारत ने क्या लिखा है कि कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय है, ये रामबाण उपाय है, फेल नहीं होने वाला उपाय है, वो कभी निष्फल नहीं जाता। वेद ज्ञान जीव करे और उसको अनुभव नहीं होवे, समर नहीं होवे, ऐसा बन सकता
नहीं है।
ऐसी बात है, वेद ज्ञान करे और अनुभव होगा या नहीं भी होगा, ऐसा हो सकता नहीं है। ऐसे वो सम्यक सन्मुख में टोडर मल जी का आएगा, वो सातवां अधिकार में आएगा, पीछे आएगा कि सम्यक दर्शन का निमित्त तो तत्व ज्ञान का अभ्यास है। मैंने पूजा भक्ति यात्रा के दयादान वो कोई निमित्त भूत भी होते नहीं है। अब तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को किसी को सम्यक दर्शन होता है और किसी को नहीं होता है,
क्यों?
ऐसा भेद ज्ञान में नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान में नहीं होता, क्यों? कि तत्व ज्ञान का अभ्यास दो प्रकार से होता है, बहिर्लक्षी अयथार्थ होता है और अंतर्लक्षी स्वलक्षी यथार्थ भी होता है। जिसको यथार्थ होता है उसको सम्यक दर्शन होता ही है, जिसको अयथार्थ होता है उसको सम्यक दर्शन कभी नहीं होता है। दोनों बात फाइनल है। पर भेद ज्ञान तो प्रयोगात्मक है, भेद ज्ञान का प्रयोग होने से तो उसका अनुभव आए आए और आए बिना रहे नहीं, ऐसी बात है। समझ लेने की बात है, बात तो समझने की है कि अभी तक अभ्यास किया उसमें क्या किया। वासुदेव भाई का तो जन्म ही सोनगढ़ में है, जन्म सोनगढ़ में है ना, अभी कितना हुआ उम्र, 70 हुआ, देखो 70 साल से सोनगढ़ में रहे हैं। अभ्यास तो यथार्थ करना चाहिए। सभी संगनीपासन प्राणियों को क्षोभशम होता है, मन मिला, संगनी पंचेंद्रिय हुआ, वो सम्यक दर्शन पाने का अधिकारी है, ऐसा भगवान कहते हैं। दिनेन्द्र देव ने ये बात कही है। तो जैसे तिरियंच है, तिरियंच है, उसको क्षोभशम कितना, वो गैया है, भैंस भैंसा है, हाँ सर्प है, क्रोधी प्राणी है, सर्प क्या है, क्रोधी है, बाघ चित्ता हाथी सिंह सब क्रोधी प्राणी है, और समुश्रण में आते कि नहीं आते, उसको ऐसा कहते कि तुमको क्रोध है, समुश्रण में नहीं आने देंगे, तुम तो क्रोधी प्राणी है, क्रोध के साथ तुमको ये भाव मिला है इसलिए समुश्रण में नहीं आने देंगे, ऐसे बोलते हैं नहीं, जो भी भवी है वो समुश्रण में आते हैं, अभी भाव पे भी नहीं आते, वो ना बोलते हैं, वो ना बोलते हैं, खुद ही ना बोलते हैं, हमको वहां नहीं जाना है, समझे, तो वो नहीं आते हैं, वो आते नहीं है, इसलिए कहते हैं कि वो वहां है नहीं, लेकिन आते नहीं है तो कहां से होंगे। लेकिन क्रोधी हो कैसा भी हो, संगनी पंचेंद्रिय है, वे आते हैं और उनको सम्यक दर्शन होता है, और इसका बड़ा सबूत महावीर स्वामी का जीव है, उसी के भाव में सम्यक दर्शन को पाया, पाया कि नहीं पाया, संगनी प्राणी को क्षोभशम होता है। इसमें क्षोभशम कितना चाहिए, आप ये कहेंगे कि शास्त्र कैसे पढ़े, कैसे समझे, कि यहाँ शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहां तो सुख दुख का प्रयोजन है, आत्म सुख और आत्म दुख, आत्मा को दुख कैसा है वो भाव में कौन समझे, संगनी समझता है अच्छी तरह, और संगनी समझता है लेकिन अच्छी तरह नहीं समझता है, असंगनी को भी दुख होता है, नहीं होता है नहीं है, तो वो तो ज्ञान तो हुआ, लेकिन कैसे मिटाना इसका विचार शक्ति मन नहीं होने से उसको नहीं होती है। ये सुख दुख का विषय है, इतना क्षोभ संसंगनी प्राणी को होता है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन का अधिकारी है, ऐसा भगवान ने कहा है। यहाँ तक रखें।
गुरुदेव श्री पंडित जी निमित्त है।